पहले भाई साहब के वक्त कि इफ आई एम यू थिंक आई एम द प्रॉब्लम, मैं एक तरफ होता हूं, बट गिव मी योर रोड मैप, आपके पास आंसर क्या है? अगर आपने पाकिस्तान इन सब को दोज हुए एम्बेजल द कंट्री, दे हैव बचेड द कंट्री द वे दे हैव डन, अगर यही इसका नतीजा है तो फिर तो नहीं, आई एम देयर अगेंस्ट ऑल दिस। क्या तो मुझे आप बताएं? तो इनका जो आपने पहली बात फरमाई कि अगर मैं कहता हूं कि नेशनल कांग्रेस ने कहा कि कुछ हो नहीं रहा, मैं कि इमरान खान से फारिग हुआ तो कुछ करें ना, मतलब पूरे मुल्क के वसाइल, एक एक चीज आप जस्ट इमेजिन करें, इकोनॉमी को देख लें, जुडिशरी के आप देखें जो रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है जी, इसी हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जरा इमेजिन कीजिए कितना रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है इस अनप्रोडक्टिव एफर्ट पे, जो ढाई साल के बाद भी रिपीटेड फेलियर के बाद, नॉट वंस, रिपीटेड फेलियर के बाद, आप ले लीजिए तारीख, दोबारा मैं गुजारिश करता हूं जी कि मार्च 25, 27 से लेके आज तक देख लें, एक चीज जो इन्होंने करना चाहिए करी, क्योंकि दे आर यूज टू इन द पास्ट हो जाता था, दे मस्ट कंसीड टू दिस रियलिटी कि इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान टूडे, पाकिस्तान के अवामोन्नास ने एक वर्डिक्ट दे दी है, यू गॉट टू एक्नॉलेज दैट, एंड दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि अभी भी उसको जो प्लीट करे उस वर्डिक्ट को वो कहता है कि कानून और जाब्ते के मातहत रहो, वेरस दूसरे एंड पे ब्लेटेंट वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जाब्ते की हो रही है, उसके बावजूद उसकी टॉलरेंस देखें, वो कहीं आउटलॉ नहीं बनने को कह रहे अपने फॉलोअर को। तो मैं दोबारा वही इसी बात पे आता हूं जी कि
इमरान खान कहीं भी आउटलॉ करने का नहीं कह रहा,
आपके सामने है उसने, आप देख रहे बार बार, हालांकि टुडे आई अंडरस्टैंड सो द काइंड ऑफ फॉलोइंग ही हैज, माइंड यू आरफा बैन के इसकी फॉलोइंग का बहुत बड़ा बल क्यों है, वो यूथ है,
और यूथ के 7% यूथ है तकरीबन,
आप जरा तसव्वुर कीजिए, और आई नो आई इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ पाकिस्तान जी, व्हाट्स काइंड ऑफ सेंटीमेंट दे हैव जी, उसके बावजूद इसने उनको हार्नेस किया हुआ है जी, क्यों? फॉर नेशनल इंटरेस्ट जी, एक क्योंकि उस शख्स का, मुझे इस पर कम अज कम कोई शक नहीं है कि उसका जो मकसद है वो पाकिस्तान है जी, और मैं इन सबको हजार को भी कहता हूं कि मैं अस्यूम करता हूं कि आप भी बहुत, मैं किसी को नहीं बुरा पाकिस्तानी कहता, अगर मकसद पाकिस्तान है तो लेट्स राइज अबव दीज इरिटेशन जी, क्योंकि करके आपने देख लिया इट डजंट वर्क, आपके सामने ग्लोबल मिसालें हैं जी, श्रीलंका आपके सामने, अफगानिस्तान आपके सामने है, लेटेस्ट मिसाल बांग्लादेश आपके सामने है, अल्लाह ताला आपको कितनी वार्निंग और दे जी, मैं तो एज ए पाकिस्तानी मेहनत करता हूं जी कि अभी भी संभल लें, दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि जो बंदा जिसके जो उसके मुकाबले में है वो इज अ गुड पाकिस्तानी, पाकिस्तान के नाम पे आज भी वो बैठने को तैयार है आपसे बात करने का, हाँ रिफॉर्म्स वो करेगा जो बिल्कुल
आर्मी को, द ओनली प्रॉब्लम आर्मी हैज कि वो, मुझे ज़ियाउल हक की एक बात आती है कि कब्र एक है मुर्दे दो हैं, द वे नाउ इमरान खान हैज टर्न्ड, उसने रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स और तरह के करना चाहते हैं, टू एवरीथिंग ब्रिंग इन द कंट्रोल ऑफ आर्मी, वेयर एज इफ इमरान खान विल कम ओवर उसके रिफॉर्म्स होंगे कि आर्मी अपने काम से काम रखे और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो।
देखिए बड़ी वाजे बात है आरफ बहन, इन रिफॉर्म्स को पढ़ लीजिए ना जी, एक्चुअली फॉर्मल तो उसका मसाला आए नहीं सामने कि आदमी इस पर बात करे, लेकिन जो प्रेस में बातें निकली हैं, कम से कम जो निगोशिएशन में बातें हुई हैं जिनको लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है, तो वो नेशनल इंटरेस्ट तो नहीं है, वो तो जात का इंटरेस्ट है, वो तो पर्सनैलिटीज को प्रोटेक्शन देने की बात है। इमरान खान की अगर मैं बात करता हूं, जब मैं कहता हूं रिफॉर्म लाए गए इदारों में, तो ये जो अब्यूज और मिस यूज ऑफ पावर है, मैं आई अंडरस्टैंड सो, पता नहीं वो क्या करेगा जा पाएगा, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि वो बिकॉज आज आप इमरान साहब को, इमरान खान को थ्योरी में नहीं बताएंगे कि ये वो ये करते हैं और ये होगा, उसके साथ हुआ है, ही नोज, ही हिमसेल्फ हैज बीन द विक्टिम ऑफ ऑल दिस, तो एग्जैक्टली नो कि क्या होता है, तो वो जो अब्यूज और मिस यूज ऑफ पावर है उसको तो डेफिनेटली देखेगा, मेरा ख्याल है जातियात पे नहीं जाएगा, हाँ उसको करेक्शन में अगर कोई चीज किसी की जात आती है उसका मैं नहीं कह सकता। अभी दोनों में आपके सामने गुजारिश करता हूं जी कि जिन लोगों को विक्टिमाइज किया हुआ है, फॉर्मल चार्जशीट भी आपने नहीं दी, डेढ़ दो दो सालों से पाबंद किया हुआ है आपने सलाखों के पीछे, आपका क्या ख्याल है कि जब इमरान खान के पास आएंगे तो इमरान खान क्या कहेगा, इनको क्या जवाब देगा? लेट्स बी रियलिस्टिक। लेकिन मैं आज भी, क्योंकि इमरान खान का मैं इसके लिए कहता हूं जातियात उसकी, अगर आज तक आप जात देखें ना, इवन एज क्रिकेटर देख लें, उनके अपने अजवाजी जो मामलात रहे हैं, आई डोंट थिंक सो ही हैड एवर बीन रिवेंजफुल, आई डोंट थिंक सो, उसकी तबीयत नहीं है जी। हां जो मुल्क के मफाद में रिफॉर्म की बात है, यहां मैं कहता हूं ये कड़वा घूंट पी लें जी, आज भी मैं बाइसियत एक हम्बल पाकिस्तानी के मिन्नत करता हूं,
अगर एस्टेब्लिशमेंट
जी दे मस्ट कंसीड टू द रियलिटी, इमरान खान इज is the political identity, the most popular political identity in Pakistan to reckon with. Isme koi abham nahi hai ji. This has been proved times and again. Election ke baad bhi uski dilute ne, main aaj bhi kehta hu, maybe incremental, lekin uski popularity jo hai abhi bhi saturate nahi hui ji. Maybe incremental increase hai, lekin aaj bhi increase hai ji. Meri naqis hi raaye mein, mere paas statistics figures to nahi hai, lekin main jab sentiment dekhta hu Pakistan mein, and they are making him. Isme sabse badi contribution inhi ki hai, push and pull hai ji. This is leading to that extent. Aur hasil kya kiya ji? نہیں تو وہ انجام دیکھنا چاہتے ہیں جو ہو رہا ہے جی. اور پھر کیا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہی ایسے ہے جی کہ سم تھنگ وچ از ایز کلیئر ایز براڈ ڈے لائٹ. وہی پھر قرآن کی آیتیں سامنے آ جاتی ہیں جی. ہوتے کرتے آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا جو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے جی. آپ ذرا دو منٹ کے لیے تصور کیجیے. اچھا نہیں لگتا مجھے یہ بات کرتے ہیں لیکن میں ایز اے پاکستانی آئی ایم کمپیلڈ ٹو. جب پاکستان کی ہم بات کریں گے, قاضی صاحب نام بھی قاضی اور عہدہ بھی قاضی کا, آپ امیجن کریں وہ چھوٹا سا بچہ جس نے اٹھ کے یہ بات کہی ہے جی, اور اس کے بعد جو قوم نے ریسپانس دی ہے, دیٹ ریفلیکٹس دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان جی. یہ کوئی میڈیا نہیں ہے, کوئی مشینری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. کتنی آپ کو مثالیں چاہیے جی. ایکس آرمی چیف باجوا صاحب ہمارے سالار تھے جی, آج سیکورٹی کے بغیر پاکستان میں چل رہا ہے. لیٹس بی لیکن میں مجھے یہ بات کرتے خوشی نہیں ہو رہی ہے پاکستانی کی کہ اگر ہم نے لیکن ہمارے سامنے میں وہی مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جی ان باتوں کی. یہ حقائق ہیں, اس پہ مجھے پکڑتے ہیں مارتے ہیں اندر کرتے ہیں, بھائی کیا حقیقت بدل جائے گی؟ آپ نے زور لگا کے بھی دیکھ لیا, کیا آپ دن کو رات اور رات کو دن بنا سکتے ہیں؟ جب یہ ریالٹی آپ کے سامنے بار بار ملٹیپل ٹائمز ان ویریس فارمز فرام مائکرو ٹو میکرو فرام لوکل ٹو انٹرنیشنل لیول آپ کے سامنے مثالیں ہیں, اگر آپ اس سبجیکٹ کو لیجئے جی کہ آپ کی ٹائرنی سے کتنی دیر تک آپ پش کر سکیں گے جی. لوگ اینڈ آف دا ڈے نہیں بھولتے جی. آج بھی میں کہتا ہوں جی کہ اس سٹیج سے خدا نہ خواستہ, بیکاز آئی ول ناٹ بی ہیپی کہ عمران خان سکسیڈز دس وے, کہ خدا نہ خواستہ کہ ہماری کہیں بڑا ادارے کی یا کسی کے اور کے ہم ایک خانہ جنگی سے خدا نہ خواستہ نکل کے ایک چیز اچیو کریں جی. لیکن تاریخ میں یہ ہوتا ہے جی. وی کانٹ کلوز آر آئی. آئی مین آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, ویسٹ کی دیکھ لیں, اسلامک ہسٹری دیکھ لیں, سولاشن دیکھ لیں, اٹ ہیز ہیپنڈ. ہماری آنکھیں بند کرنے سے یہ حقیقت نہیں تبدیل ہو سکتی جی. تو میں تو آج بھی کہوں گا جی کہ لیٹس پٹ آر سیلف ٹوگیدر جی اور پاکستان کی بات کریں. میرے خیال ہے اس کے سامنے کوئی بھی اگر ایسی تجویز.
ڈو یو تھنک کہ دوز ٹو پارٹیز جنہوں نے اتنا کمپرومائز کر لیا ہے ول دے لیٹ اسٹیبلشمنٹ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسائل کرنے دیں گے؟ ول دے لیٹ دیم ڈو سو؟
اچھا اب آئیے, آپ نے یہ بات کہنی جی پارٹیز کی, اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا. میں اس کو پارٹیز نہیں کہوں گا, پارٹی کی قیادت کہوں گا. ہمارے یہاں پارٹیز نہیں ہیں جی. پارٹیز تو ہوتی ہے پھر پارٹی چلاتی ہے, یہاں تو ایک شخص چلاتا ہے. اور ان پارٹیز میں بھی جتنے انہوں نے رب کیے ہے, اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں جی کہ اس مسودے میں یہ جو آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں, آل بی ٹو سرپرائز کہ اپنے بھی اگر یہ پورے ووٹ ڈلوا گئے جی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مطلب آپ سمجھیں کہ 100% کسی کا بھی ضمیر نہیں ہے جی.
اچھا
آئی ریسپیکٹ فضل الرحمان صاحب فور دس تھنگ, لیکن فضل الرحمان صاحب ویری ویل نوز دا سینٹیمنٹ ڈاؤن لائن ان دا پارٹی اینڈ ان ہز فالوئنگ آلسو. کیا واقعی آپ کے کنٹرول میں آپ کے اتنے ووٹ ہیں آج؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ جتنی چیزیں پش ہوئی اس کا ایک فائدہ بہت ہوئے. جہاں پہ پاکستان کے 2.5 سال کا جو سفر ہے, میں ایک ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مثبت پہلو بھی ہے کہ غالباً یہ سب وہ چیزیں ہوتی تھی پاکستان میں ان دا لاسٹ 75 ایئرس. یہ اس کی ایک بڑی ہی, اگر آپ اس کو اکیڈیمیکلی انالائز کریں تو یہ اس کی ایک کنڈنسڈ ورژن ہے جی. دیز 2.5 اور لٹل لیس دین 3 ایئرس, یہ اس کی ایک کنڈنسڈ ورژن ہے جی. اور اس کنڈنسڈ ورژن کا جو فائدہ ہوا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو دیز ہارڈلی اینی گرے. Things are in black and white. Okay, اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں آؤٹ آف پروپورشن بھی بلو ہوتی ہیں, سوشل میڈیا بہت کچھ اس میں بھی. لیکن اگر کوئی چاہے تو فلٹر آؤٹ کر سکتا ہے جی کہ حقیقت کیا ہے. یہ اس سے پہلے نہیں تھا ہوتا. یہ جو اب جس طریقے سے چیزیں سرفیس, صرف میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی بڑی بات کی ہے, کچھ دن تک رہ سکتے ہیں, اس کے بعد اگین اٹ بیکمس پبلک. By and large, کوئی ایکسپشنز کی میں بات نہیں کرتا. نظام ایسا بن گیا دنیا کا. یہ ویسٹ بھی, یہ جو سوشل ایسپیکٹ ہے, جو سوشل میڈیا ٹولز جو اب آ گئے ہیں, ایون ویسٹ کے بھی بس سے باہر چلے گئی ہے. یہ جو پہلے ہوتا تھا نا جی انسٹیٹیوشنز, دے وڈ میک یو بلیو وٹ دے وانٹ یو ٹو بلیو,
کنٹرول,
دیٹ از ہسٹری. اس ساری چیز میں جو سب سے بڑی ہمارے ادارے کو جو کنسیڈ کرنے کی ضرورت ہے اس ریالٹی کو, یہ مونوپلی اب ختم ہو چکی ہے. Either they come up with something smarter than this, if that is not, then they should accept this reality. جی اور سب سے بڑی بات ہے, حقیقت سے آپ منحرف نہیں ہو سکتے. اوکے, مسلط کے تحت اگر آپ نے ایک چیز کرنی ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن مسلط کے تحت جب آپ وہ کرتے ہیں تو وہ ایک ایکسپشن ہوتی ہے. اف ایکسپشن بیکمز دا رول جو کہ اب آپ نے انہوں نے کیا ہے, تو پھر یہ نتیجہ اس کا ہے.
میں ایک سوال آپ سے جو کرنا چاہتی ہوں, میں بالکل میں مانتی ہوں کہ عمران خان ہمسیلف از این آنےسٹ مین, بٹ انفارچونیٹلی دا ٹائم جب وہ 3-3.5 سال کا تھا تو ان کی سلیکشن آف دا پیپل واز ناٹ گڈ, نمبر ون. نمبر ٹو, آپ نے کہا کہ وہ ریونج فل نہیں ہوں گے, تو ریونج فل نہ ہو مگر اخروٹ بھی نہ ہو, جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا باجوا صاحب کرنا چاہتے تھے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. آئی تھنک ایز اے پرائم منسٹر ان کو ہر چیز کی شی مسٹ بی آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. ابھی بھی جب یہ 2-3 سال کا, یعنی آپ 22 سے لے کے آج تک کا وقت نکالیں, 2-2.5 سال کا جو عرصہ ہے, ان کو چاہیے تھا کہ یہ باقاعدہ منسٹرز کے برابر طور پہ رکھ کے, منسٹریز رکھ کے انالیسز کر رہے ہوتے کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے. نو بڈی از ایجوکیٹنگ پیپل آن دیٹ, صرف ہڑتالوں, اسٹرائکوں, جلسے, جلوسوں کے علاوہ میرا خیال ہے قوم کا کیلبر ہی اور کہیں نہیں رکھا.
جو آپ نے بات فرمائی ہے عمران خان ٹیم, سلیکشن آف ٹیم, آئیے عمران خان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے, بڑے ان کے کریڈینشلز ہیں, ان کے شارٹ فالز بھی بہت تھے اور ہیں اور شاید ہوئیں گے آئندہ بھی, جن میں سے میرے تجزیے میں ان کا جو ایک بہت بڑا شارٹ فال تھا عمران خان کا, انہوں نے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں تھا کیا
اس سے پہلے.
میں آتا ہوں جی, اٹس ہارڈ فار ہم ٹو ڈائجسٹ اینڈ ایکسپٹ دس تھنگ. دیکھیں, ٹین ایج میں ہی وینٹ ابراڈ, ہی بیکیم اے سیلیبریٹی. عمران خان پاکستان آئے, ہیرو تھا, کوئی کھانا ایکسپٹ, 200 لوگ درخواست کرنے, ایک کا کھانا ایکسپٹ ہو گیا. بٹ فنڈ ریزنگ از این انٹریکشن, بٹ دیٹ از ناٹ دا انٹریکشن وچ یو نیڈ فار دا گورننس آف دا کنٹری. دیکھیں, آپ نے پاکستان میں رہے ہیں, آپ نے ذمہ دارہ کی ہے, آپ نے کام کاروبار کی ہے, آپ نے فوج کی نوکری کی ہے, سول کی, آپ نے اپنے اس ایکسپوجر میں ایک انٹریکشن کی ہے ایک نظام کے ساتھ. آپ کو ایک نظام کا بھلے اپنے سیگمنٹ میں ہو ایک ایکسپوجر ہے. عمران خان کا وہ بہت بڑا مسنگ ایلیمنٹ تھا. پھر ان کی پرسنالٹی کی کچھ چیزیں ہیں کہ ہی ٹرسٹ, اور وہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, میں بھی بلیو کرتا ہوں ٹرسٹ کرنا, لیکن ٹرسٹ ایک ہونا چاہیے ایک سرٹن لیول آف کوالیفیکیشن کے بعد, کیونکہ ان کا اپنی اس چیز میں انسائٹ بہت کم تھی, محدود تھی, لہذا ان کو گورننس کی بہت پرابلمس آئیں. اب آئیے, یہ تو ہو گیا ایک ایسپیکٹ جو عمران خان کا اپنا ذاتی, میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بہت بڑا شارٹ فال تھا. آئی ہوپ ہی ہیز ڈیورنگ دس پیریڈ ہی ہیز لرن, وچ آئی بلیو ہی مسٹ ہیو لرنڈ اے لاٹ. جی, اب آ جائیے, آپ نے کہا کہ ٹیم آفٹر وین, آئیے میں آپ کو بناتا ہوں, کہتا ہوں کہ فرض کیجیے آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم ہیں, آپ نے جب کیبنٹ بنانی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, صوبوں کا بیلنس رکھنا, اتنی صوبے کی, اتنے صوبے کتنے کے, اتنے کولیشن ممبرس, وہ ناراض نہ ہو جائے, یہ نہ, یہ ہمارا طریقہ کار ہے. فار ایگزامپل, ہمارے ایک آئی ٹی کے وزیر بنے, وہ اتفاق سے ہمارے کو جاننے والے, ان کا ان سے بات ہی, تو انہوں نے کہا جناب مبارک ہو, آپ مبارک دینے گئے, تو انہوں نے کہا میرا تو ایس ایم ایس میرا بچہ کرتا ہے, مجھے آئی ٹی کا. انہوں نے کہا فی الحال آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ایک صاحب بنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, ان سے تو بانس نصیب میں نے مبارک, میں نے ان کو ایسی مذاق کیا, میں نے کہا جناب فزکس اور کیمسٹری میں, وہ کہا جی میرے گلے یہ آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے, بعد میں آپ کو دوسری وزارت دیں گے. آپ وزارت کے جو کسٹور, اچھا میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ہمارے جو سیاسی, آئی ایم شیور کہ بہت سارے دوست اور بھائی سے اور بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں میرے سے اس بات پہ, بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو سے دس تھنگ. جو ابھی اسمبلی ہے نکال لیجیے, 336 کا غالباً ہاؤس ہوتا ہے خواتین کی سیٹ میں لا کے, میں آپ کو کہتا ہوں 30-35 کی مجھے آپ کیبنٹ بنا دیجیے, یو فرینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں 30-35 بھی نہیں ہے. نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, ہمارا جو ایک سیاست کا نظام ہے, اور اس نظام میں یہ ہے کہ اگر ان 335 کو کی آپ وزیر اعظم ہیں نا جی, میں نے ان 335-336 سے پوچھنا ہے کہ آپ کی کارکردگی کیسی ہے. تو موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ از, آپ نے جب ووٹ لینا کارکردگی پہ لینا ہے نا, تو انہیں سے میں نے ووٹ بھی لینا ہے. ये अब सिस्टम की कंपल्शंस हैं जो मेरी अगर आप जाती राय कहेंगी ये सिस्टम प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन ये एक मेरी जाती राय होगी। मैं पाकिस्तान के आयन के दस्तूर में रहते हुए बात करूंगा, उस सब्जेक्ट पे आपने वैसे बात करनी हो तो जरूर करेंगे कि फिर क्या होना चाहिए पाकिस्तान का निजाम। तो इस निजाम में तो यही है, वो जो आप, मैं आपसे गुजारिश करता हूं ये दो मिनट के लिए दो ढाई साल का पीरियड एक तरफ कर दीजिए, मैं खुद तीन इलेक्शन से बहसीयत कैंडिडेट गुजरा हूं, जिस मुल्क में लेजिस्लेशन की क्वालिफिकेशन वोट देने की ये है, बंदे मराओ बंदे डकाओ बंदे छुड़ाओ, 70% पाकिस्तान आफा बैन रूरल है, ये क्राइटेरिया आज वोट देने का है, लेजिस्लेशन का वोट देने का, जो यूनियन काउंसिल के मेंबर को वोट देने का क्राइटेरिया है वही कौमी असेंबली के वोट देने का क्राइटेरिया है। तो मुझे आप फिर बताइए, अंग्रेजी में वो कहते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। मुझे पता है मेरी इस बात से बहुत सारे हमारे सियासी दोस्त नाराज होते हैं, पहले भी मुझे कुछ पैगाम आए हैं, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, व्हेन वी टॉक टू अबाउट पाकिस्तान जी, अगर ये स्टॉक है, आप मेरी बात को छोड़िए, मेरे कोई भी दोस्त जिनको बात सुन के ऑफेंस हो रहा है, आधा पौना घंटा चले जाएं असेंबली का इजलास देख लें, उसके बाद बता दीजिए खुद कि वहां पे मुझे आप बता दीजिए कि आपको कोई ऐसा माहौल नजर आता है कि इन मेंबर साहबान की लेजिस्लेशन के साथ कोई कमिटमेंट है।
They might not have gone through the कानून as
मैं आपको नहीं ना जानते, देखें मैं आपको गुजारिश, ओके कानून का एक्सपर्ट होना है फिर तो सबको वकीलों को
नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत
नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं बताता हूँ राष्ट्र में, देखिए हर कानून जो है ना जी, राइट एंड रॉन्ग अल्लाह ताला ने बिल्ट इन आपके अंदर ये मैकेनिज्म रखा है, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट टू इंटरप्रेट इट, सही और गलत, ये क्यों इन ममालिक में भी ये तालीम की कंडीशन क्यों नहीं रखते जी, एक बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है, देयर इज नो अपना सच, आपके किरदार की क्वालिफिकेशन है, तालीम की क्वालिफिकेशन नहीं, आप हैं कौन, दैट इज व्हाट मैटर्स, फिर तो आपके एक्सपर्ट मिनिस्ट्रीज होते हैं
के जो, सॉरी टू इंटरप्ट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का किरदार जो है, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आके मीट करें तो डू दे क्वालिफाई फॉर ऑल दोस,
अगेन एज ए पाकिस्तानी आई फील अशेम टू से जी, कि आज जब आपको इनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है बिजनेस या उसमें जब करप्शन की मिसालें दी जाती हैं, उनमें हमारे सियासतदान जो हैं कुछ पर्सनालिटीज उनका बाय नाम उनके सिलेबस में आ गया जी, अब आप मुझे बताइए फिर, मैं आप मेरे से सवाल करती हैं, मैं क्या
जरदारी साहब का नाम आया उसमें
और भी है जी, छोड़े उस फिर एज ए
पाकिस्तानी,
बट द पॉइंट इज जो आपने बात फरमाई है,
एक और चीज मेरे मुझे अक्सर बड़ा बॉदर करती है, दिस इज बहुत से लोग, मुझे पता है आप लोग एक तो माशरे के बदलने के साथ साथ हम रियल चीजों को पसंद नहीं करते, हम फेक चीजों को पसंद करते हैं, मेरा ख्याल है ये चीजें बिगड़ने में, जब बिगाड़ आता है इट्स पार्ट ऑफ दैट, पाकिस्तान के अक्सर इंस्टीट्यूशंस का जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम मुआवजना करते हैं तो वो बिलो द लेवल जा रहे हैं, 130th लेवल पे है, 37th लेवल पे, 139 लेवल, बाय द वे पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी पहली पांच यूनिवर्सिटीज में आ गई, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, मुबारक हो आप तमाम को, मगर पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वो अपर लेवल पे आ रही है, इसकी क्या वजह है, ये भी कोई सिफारिश है?
आर्मी नहीं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आज भी आप देख लें इसमें फिर लोग फ्रेंड, अगर मैं विदारे की बात करूं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं करूं,
मगर देखिए हमारा अदलिया का वो लोग अक्सर कोट करते हैं, विंस्टन चर्चिल की बातचीत को कोट करते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा हमारी अदलिया, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी अदलिया बड़ी थी, आपकी अदलिया भी 137th नंबर पे जा रही है, तो व्हाट इज द रीजन कि हमारी जो फोर्सेज हैं दे आर स्टिल ऑन द अपर लेवल?
वेरी सिंपल जी, वन वर्ड, मेरिट। आई नो an Air Force chief in office couldn't get his son selected for ISSB. ek cheez hai sir, exceptions ki main baat nahi kar raha, exceptions ho jati hain, by and large merit hai ji, aur yahan pe services mein kuch saal ke end mein acr nahi hai, daily basis pe performance hai ji, main agar let's say pilot ho ek squad mein ho,
ab to aap, sorry to interrupt you sir, it's very important to interrupt here ji, aapne kaha ki credentials aapke acr, मगर बाजवा साहब को पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो आए उस पोजीशन पे लाने में जनरल अमजद साहब ने बड़ा, उनके फादर इन लॉ ने बड़ा रोल प्ले किया था।
देखिए मैं गुजारिश कर रहा था जी, आप बात बार बार, मिसाल के तौर पे सर्विसेज में साल के एंड में तो एक फॉर्मेलिटी होती है एसीआर की, आपकी एसीआर रोज लिखी जाती है, if I have flown a mission today, meri grade slip bhari jayegi. It will be known how I perform today. Aur isi tarah services mein, daily business ke upar, aapki jo accountability hai, wahan pe there is nothing like non-performance ya refusal to command, khuda na khasta, is naam ki koi cheez hi nahi hai ji.
Discipline.
آپ سروسز میں چلی جائیے, اکیڈمیز میں چلی جائیں, کاکول چلی جائیے, رسال پور آپ چلے جائیں, اپنا کراچی نیول اکیڈمی آپ چلی جائیے, آپ ان کیڈٹس کا اسٹینڈرڈ کسی بھی دنیا کے جو ڈیولپڈ اسٹینڈرڈس ہیں, اسٹینڈرڈس میں کیوں ہمارے کیڈٹس, میرا خیال ہے دس از پرابلی تھرڈ اور فورتھ ٹائم ہمارے کیڈٹس آف کمپٹیشن جیت کے آ رہے ہیں, ڈرل کمپٹیشن اسٹینڈرڈس میں, انٹرنیشنل کراس کنٹری ایکسرسائز میں ہمارے لوگ جیت رہے ہیں, ویریئس ان کی اکیڈمیز میں, ابھی پیچھے آسٹریلیا کی اکیڈمی میں ایئر فورس کے ہمارے کیڈٹ ہیں, ہی گاٹ سورڈ آف آنر جی, چھوڑ دیجیے یہاں پہ. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی گلی, آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر جا کے دیکھ لیجیے,
بڑی مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے,
جو انٹرنیشنل کورسز میں جاتے ہیں جی, آر سی ڈی ایس میں دیکھ لیجیے جی, جو ہمارے وہاں پہ آفیسرز جاتے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں. آج بھی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کمانڈ کی, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر ہارڈ کور پروفیشنل اسپیکٹ, وہ تو کبھی ڈسکس ہی ہم نہیں کر سکتے, ہم تو ان کا جو پولیٹیکل رول ہے, جو ایجنڈا آئٹم ہی نہیں ان کا, وہ ڈسکس کرتے ہیں سارا. دے مسٹ ہیو ریچ ٹو دس پلیس بائی اینڈ لارج ایکسپشن, ابھی آپ نے بائی, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایکسپشن اس تفصیل میں نہیں آتا, اس میں بھی آپ صفر کو سو نہیں بنا سکتے, اس میں بھی آپ کو انکریمنٹل, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں
صفر کو سو تو آپ نہیں بنا سکتے, مگر آپ پھر بھی ابھی جنرل آصف منیر صاحب ہیں جس ڈپارٹمنٹ سے یہ ہیں, یعنی کائنڈ آف فیلئر ہی تھے یہ, پھر ان کو اس جگہ کے اوپر لایا گیا, وہ تو پھر آگے قسمت کی دیوی بھی مہربان ہو گئی.
جنرل آصف کو ہی ہیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل کریئر جی, فروم اوٹی ایس آئی تھنک اف آئی کریکٹلی انڈرسٹینڈ یور سورٹ آف آنر, آپ نے اس میں پرفارمنس میں پروفیشنل, یہ میں آپ کو یہ تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ اب انفارچونیٹلی اتنا امیج ٹارنش ہو گیا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ ایون واٹ آئی ایم سیئنگ ناؤ ول ناٹ بی ویری ویل ویلکم, بٹ آئی ایم اوبلائزڈ ٹو سے دس تھنگ, ان کا جو پروفیشنل اسپیکٹ ہے اس میں دے آل دے بائی اینڈ لارج دے ہیو دیئر میرٹ جی, بائی اینڈ لارج, یہ تو ہم جتنا ان کا ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکل رول ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں تو ایکسپوجر ہی کوئی نہیں نا جی ان کا, ہمیں تو ان کا ایکسپوجر کا ایک ہی ٹیسٹ ہے کہ جب وہ کمپٹیشن میں یا کوئی ہمارا وار یا پیس, اس میں بھی ایک میں ذرا کانسیپٹ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں جی, ہمارے لوگ کہتے ہیں کیا کیا اس فوج نے, آپ تصور نہیں کرتے
کوئی آج تک ایک جنگ,
ہمارے دشمنوں کے اسٹائل ڈیزائن ہے, یہ فوج تھی تو یہ بچا ہوا ہے سارا کچھ, اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی ذات تھی, سب سے پہلے میں کہوں گا, اس کے بعد یہ فوج تھی.
ایک اور چیز آپ سے میں ایلیبوریٹ کرانا چاہتی ہوں ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں یہیں پہ پروگرام کو اینڈ کروں گی. اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے اور یہ جنگ لبنان کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے, پاکستان نہیں مان رہا, ایکسیپٹ نہیں کر رہا اسرائیل کو, اور میرا تو خیال ہے, میں آج بھی صبح کس سے بات کر رہی تھی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, حضرت داؤد سے ہیں, تو مطلب آپ ایکسیپٹ کر لیں, اب ایک حقیقت ہے, آپ اس سے دور بھی نہیں جا سکتے, بٹ پاکستان ایئر فورس کہ کچھ لوگوں نے پرفارم کیا تھا, والنٹیئر ورک کیا تھا, کین یو پلیز اس کو شیئر کر سکتے ہیں, آپ مثال, آپ مطلب وٹنس ہیں اس واقعے کے.
جی میں گزارش کرتا ہوں جی, پہلے میں تھوڑی سی ہماری پہلی بات ایک نامکمل رہ گئی تھی, اس کو مکمل کرتا ہوں, میں ریکنسلیشن کی اس بات پہ, اس پہ میں میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے جی, لیکن اگر میری کہیں آواز کہیں پہنچ رہی ہے, میں ان پارٹس ٹو بی کو گزارش کروں گا جی, کہ مجھے پتا ہے ان کے اوپر انٹرنیشنل کمپلشنز بھی ہیں جی, یہ پاکستان کا مسائل صرف ہماری اپنی خرافات تو ہیں ہی صحیح, ہماری شارٹ فالز ہیں, اس کو میں اکنالج کرتا ہوں, بٹ اینڈ آف دے ہم شاید سب کانشیسلی اور انکانشیسلی شاید کسی کا مقصد حل کر رہے ہوں. پاکستان دنیا کے گلوب پہ کین ناٹ بی اگنورڈ, آرفا بہن میری بات یاد رکھیے گا,
جیو پولیٹیکل پوزیشن,
پاکستان اسٹینڈز اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ارسپیکٹو ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے, ہماری پولیٹیکل ڈائیکاٹمی, ہمارے یہ اکنامک اس وقت جو ڈبیکل ہے, ساری چیز کے باوجود پاکستان کی جو گلوبل جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے آپ کبھی بھی نہیں اگنور کر سکتے, کبھی بھی نہیں اگنور کر سکتے, اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ان پارٹس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان سے, اگر آپ نا سمجھی میں ان کا پرپز حل کر رہے ہیں بیکاز دیٹ سوٹس یور کنٹینشن ٹوڈے, اٹ ہیپنس ٹو بی سو, نو, اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کچھ بھی ہو آپ مخلص پاکستانی ضرور ہیں, کوئی بھی کیسا ہو وہ پاکستانی نہیں ہے, دا بیسٹ آف دا امیرکن وڈ سرو ہز امیرکن پرپز, he'll be the best American. Or agar aapki in line hai, unke saath koi aisi cheez, so this is enough to give you as an indicator that definitely you are not serving Pakistan's purpose. So ye bada important baat hai jo main yahan pe guzarish karna cha raha hu. Ab aapne baat ki Israel, ki Israel-Pakistan relationship. Koi shak nahi hai. I think any other pilots of the world who have shot Israeli aircraft are Pakistan Air Force pilots. Aap chukke official ho gaye, to hum bhi ye baat
kar sakte hain. Aaj tak agar kisi ek Air Force ne Israeli pilots ko shot down kiya, to that is Pakistan.
Main ye nahi kahunga Air Force ne, kisi Air Force ke pilot ne. I'll have to be a little more precise over here. Kisi Air Force ke pilot ne agar kiya hai, to Pakistan Air Force ke pilot ne kiya hai.
Unke jahazon ko shot down kiya.
Acha, ab main aapse guzarish karta hu. Israel Pakistan ji. Israel aur Pakistan duniya mein do badi strange identities Allah Taala ne emerge karayi hain ji.
Dono religion.
And they have so much in common. They have so much in common. Pro iske liye actually ek program hona chahiye. They have so much in common ji. Aur agar main hamesha ye kehta hu, Israel
can you please name few
Pakistan and Israel? Ye do qaum emerge hui hain ji.
Magar in common, what is
okay? Their creation
47-48
ideology. आप तारीख देखें, वर्ल्ड वॉर 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, या 47 में पाकिस्तान क्रिएट होता है, वो 48 मिसाल के तौर पे, ठीक है? अच्छा, और दोनों की देखें फिलोसफीज कितनी टेंजेंट है. वाइल हैविंग सो मच इन कॉमन, हाउ टेंजेंट वी आर. ओके, उनको अपनी उन्होंने बका से या जिस तरीके से दुनिया में लॉबी करके उन्होंने एक अपना लोया मनवा के एक जगह पे खड़े हैं, और एक पूरी दुनिया की लॉबी उनके साथ खड़ी है. रादर दे कमांड दैट लॉबी. मैं अक्सर कहता हूं
दे कमांड दैट
कैपिटलिस्ट इज कमांडेड बाय देम. मैं बात का आपको बात हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी. जितना अमेरिका मजबूर है उनके आगे, इतना शायद कोई और मजबूर हो. वो बात एक अपनी जगह पे एक मौजूद है, उस पर भी बात नहीं करते. तो उनकी अच्छा इसी तरीके से पाकिस्तान आ जाइए जी. हम सारी दुनिया की लॉबी के अगेंस्ट यहां पर खड़े हैं. मैं वो अपनी पुरानी बात दोहराऊंगा, साइकिल शायद नहीं बना सकते, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर है. सारे दायरे 130 कंट्री से नीचे हैं. यहां पे द मोस्ट प्रोफेशनल डिफेंस सिस्टम वी हैव, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस. ये जो पाकिस्तान है और ये शायद जो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, ये दुनिया में पिवट पॉइंट होंगे मेजर डिसीजन मेकर्स के, दुनिया के फ्यूचर के. ये एक मैं परसेप्टिव बात अपनी कर रहा हूं, दिस हाउ आई परसीव पाकिस्तान जी. कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, मेरा एक पूरा फलसफा है जी, कि पाकिस्तान इज डिवाइन जी. पाकिस्तान हिसाब किताब का फलसफा ही नहीं है. मैं आज भी ये बात कहता हूं, मिस्टर जिन्ना व्हाट अ लीडरशिप, बट टेल मी वन थिंग, ही हैड कॉमन अपार्ट फ्रॉम द कलर ऑफ हिज स्किन कॉमन विद इंडियन मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. एक चीज मुझे गिनके बताइए, अल्लाह ताला ने किस शख्स को यह अलंबरदारी दी और किस दलील के ऊपर और किस निजाम से और किस तरीके से यह क्रिएट किया अगेंस्ट ऑल विशेस ऑफ द वर्ल्ड. कैसे पाकिस्तान की क्रिएशन. मैं लोग कहता हूं कि हम उस उम्र के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते नहीं देखा. वो तो वो लोग बता सकते हैं, लेकिन आज चलते हुए मैं कह सकता हूं पाकिस्तान मौजूदा है. कि जितनी हमारी अपनी नालायकी, हमारी शॉर्टफॉल्स आई एक्नॉलेज, बट कभी ये बात मत भूलिए कि पाकिस्तान पे जो इंटरनेशनल कंपल्शंस हैं उनको सर्वाइव करना आसान नहीं. आरफा बहन, ये वही बरसगर हिंदुस्तान था पाकिस्तान बनने से पहले, जो 2-2.5 हजार साल इसी खैबर पास से इन्वेड होता रहा है. हमने जंग अजीम 2 के बाद 3 वॉर्स रजिस्ट किए हैं, कोल्ड वॉर एरा, सोवियत अफगान इन्वेजन और ऑपरेशन इंडोरेंस फ्रीडम. कैसे अपने सामान को आग लगा के भागे हैं. वी हैव बीन द बैकयार्ड ऑफ दिस बैटलफील्ड. पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव्ड एंड पाकिस्तान शेल सर्वाइव. मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं जो बासकात नाउमीद होते हैं, और बिलखसूस हमारा नौजवान तबका. मैं एज श्योर एज डेथ में आपको कहता हूं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती पाकिस्तान इंशाल्लाह कहां पर जाएगा जी. ये हम एक करेक्शन से गुजर रहे हैं, और करेक्शन भी आप कभी इसको देखिए कि दुनिया के किस मोड़ के ऊपर हम आज खड़े हैं, जहां पे पाकिस्तान इतने बड़े चैलेंज से गुजर रहा है जी, अपने इंटरनल डोमेस्टिक से. इस दौर में भी आप पुलवामा का इंसिडेंट देखें जी, द वे वी रिबटल. अनफॉर्चुनेटली ईरान के साथ हुआ था, लेस देन 24 आवर्स, जीरो कोलेटरल डैमेज. तो दैट मीन्स कि सिस्टम इज वर्किंग डाउन बिलो. पुलवाना खत्म हुआ, वहां पे स्क्वाड्स में लड़ पड़े पायलट जी. वी डेंट गेट आर टर्न. ये जज्बा है आपका नीचे, ये पाकिस्तान है जिसको आप किसी किताब में नहीं डिफाइन कर सकते. ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم نے جن آرڈ میں پاکستان نے سروائیو کیا ہے, دیٹ از انف ٹو گیو اینی بڈی اے بلیف کہ انشاءاللہ. میں آپ کو مختصر سی بات کہتا ہوں جی, کوئی چھوٹے سی چھوٹی آپ پاکستان جو لوگ جینیٹوریل سروسز سے لے کے بڑے سے بڑے کو تو چلے لینا, کسی کا پاکستان میں اس طرح دو ڈھائی سال کو ایک طرف لیتے ہیں چونکہ ایک پورا ایرا اس کو ڈسکس کرنے کا. اگر آپ اس کو دو منٹ کے لیے, میں اس کو لیبلیٹ کرتا نہیں کر رہا, لیکن پاکستان میں آج تک کسی کا آپ نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتے دیکھا ہے؟
لوگ میں ویسے میں نے نہیں دیکھا. میں یہ سمجھتی ہوں کام کرنے والی کا بھی اسٹینڈرڈ بہتر ہوا, مگر پیپل سے کہ پاور.
اس کے باوجود میں آتا ہوں جی, اس میں آتا ہوں جی, مجھے پتا ہے بہت ساری چیزیں. اکانومسٹ کے نظریے سے شاید میں بات کروں تو کچھ اور بات ہوئے گی, لیکن ریالٹی کے نظر سے میں بات کروں تو کچھ اور آپ کے سامنے بات ہوئے گی. ان ساری چیزوں کے باوجود اور امیجن کریں کہ اگر گورننس ٹھیک ہو جائے, آپ اس نئے لوگوں کو گزارش کرتا ہوں آپ نے بین کہ پاکستان کی جو ٹرین ہے یہ معجزہ ہے. پھر میں ریپیٹ کروں گا اپنی پرانی بات, شارٹ آف ماؤنٹ ایوریسٹ دا نائس فائیو فائیو سکس ہائیسٹ پیکس ان دا ورلڈ دے بلانگ ٹو پاکستان. دا لارجسٹ نیچرل ڈریڈ سی پورٹ از ود پاکستان. وین وی ہیو پلس 51 52 ان جیکوباد سے بھی, وی جسٹ ہیو مائنس 25 30 کی ورسٹیلٹی آف ٹیمپریچر. دیکھیے ٹرین, دیکھیے ویلیز, ڈیزرٹس, دریا. یہ ایک پانی 35 million, جو میں اف آئی کریکٹلی ریمبر, میرے اپڈیٹ نہیں ہے ارسا کے فگرس کے, 35 million کیوسک ایکڑ پانی ان ہمالیہ ہندو کش کا جو میلٹڈ واٹر وہ ہم اریبین سی میں پھینکتے ہیں جی. آپ دیکھیے ایگزوبرنس آف ریسورسز. میں لوگوں کہتا ہوں, میری کچھ کوٹیشنز میں نے پاکستان کے مدد بتائی ہیں جن میں سے میں گزرائی کہ اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ وی کین افورڈ دا لگژری آف دس.
اللہ نے نوازا ہے مگر لوگ
انشاءاللہ میں آج
اتنے کرپٹ ہو گئے کہ آپ کی پولیٹیشنز کوئی مطلب ملتا ہی نہیں آنےسٹ.
دیکھیے اوکے, آپ جب ماضی کی بات کریں گی 100% میں آپ کی بات سے, بہت حد تک آپ کی بات سے اگری کروں گا. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے نا یہ پاکستان میں دو ڈھائی سال میں, اس کو ٹرانسلیٹ ہونے دیں جی انشاءاللہ.
اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے؟
بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جی, ایکسکیوز می, بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جی.
اویئرنس,
ایک شخص نے, آپ ذرا تجزیہ کیجیے نا جی.
حالانکہ یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں, جناب تنویر سلطان صاحب پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں.
میں اوکے, میری افیلیشن ضرور ہے اور میری افیلیشن کے لیے نہیں کہ میں کوئی ہیرو ورشپ. میں آپ کے سامنے تجزیہ کرتا ہوں نا جی, کمپیئر کر لیجئے نا جی. میں گزارش کرتا ہوں آپ کا بہن کے دو منٹ کے لیے, ہم سب انسان ہیں جی, ہم اپنی زندگی میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ہم ترقی کریں. آپ جب ترقی کرتے ہیں آپ کی چند خواہشات ہوتی ہیں. آدمی کہتا ہے فائنینشیل آسودگی ہو, نام ہو, شہرت ہو, جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے آدمی کہتا ہے بچوں کے لیے کچھ ہو. عمران خان کو تین ایج میں اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی شہرت دے دی, مانیے نا اس بات کو. اس کو آپ وہ پروسیڈز دیکھیے کورٹ کی, اس کی ڈائیورس کی, غالباً 160-170 million pounds, کہتے ہیں اٹس ناٹ مائی منی, وچ ہیو ناٹ ارنڈ از ناٹ مائی منی. آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجیے آدمی, اولاد دیکھ لیں, کوئی اس کا کینڈیڈیٹ ہے بچہ, کہیں کسی کی شکل آپ نے دیکھی ہے, کبھی کوئی طریقہ کار آپ نے اسے دیکھا ہے؟ تو کیوں نہ میں کہوں جی, اچھا آ جائے. بہت عمران خان کے کتنے شارٹ فالس تھے, جو سارے شارٹ فالس ایکسپوز کیے گئے, لیکن اس نے, میں اس کے شارٹ فالس کے باوجود اس نے خود اکنالج کیا ان شارٹ فالس کو. ہی ڈنٹ کمپرومائز آن دیٹ. اسی پہ تو کمپرومائز ہوتا ہے جو دوسرے سارے سودا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جب آپ کے اس کو کہتے ہیں چینج آف گارڈ جب ہمارا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ ہی اسٹوڈ بائی دم, ہی اکنالج شارٹ فالس, جو کوئی بھی تھے کورٹ میں لائٹ, جو پرسنل یا موریلٹی کی ڈیفیمیشن ہے اس سے برداشت کی, باقی اسے کہا کہ کورٹ میں مجھے کہیے. ہی ہیز سروائیو دیٹ, ہی ہیز سروائیو دیٹ, اینڈ دا ٹریبیوٹ وچ دا نیشن ہیز گیون, انہوں نے اکنالج کیا ہے یار کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہیں اس کے ساتھ. تو اور میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ میں اس کو کروں جی, مجھے بتا دیجیے جی ان میں سے کون سا کو بتا دیجیے, کوئی اور کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ. میں عمران خان کا اس کے لیے نہیں کہ عمران خان سے میری کوئی رشتے داری ہے, میں ایز اے پاکستانی جب ایویلویٹ کرتا ہوں, اینڈ وین آئی ڈرا کمپیرزن بٹوین دیم, تو میرا خیال ہی اسٹینڈز آؤٹ, ہی پرابلی ہی از ناٹ ایون کمپیئر.
لاسٹ کوشچن ہے آپ سے میرا کہ پاکستان کے تمام اداروں کو اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان آرمی, ایئر فورس, نیوی آر ون آف دی فائنسٹ انسٹیٹیوشنز. اگین میں دہرانا چاہوں گی کہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا بھی دنیا کی بہترین 10 یونیورسٹیز میں نام آیا, وچ از اسلام آباد یونیورسٹی. آئی واز ویری ہیپی فار دس. کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے 2-3 times اپنا امپریشن یا امیج خراب ہوا, 71 کی وار میں خراب ہوا, ضیاء الحق یا پرویز مشرف کے جانے کے اس کے بعد خراب ہوا, مگر ریکور کر لیا تھا. واٹ ڈو یو تھنک ناؤ؟ اب عام آدمی, کیونکہ بچہ یہ محسوس کرتا ہے, 67% یوتھ ہے, 67% यूथ को आला पोजीशंस नहीं मिल रही। आप पाकिस्तान का कोई बड़ा इदारा उठा लें, वहां आर्मी का कोई जनरल कर्नल ब्रिगेडियर अपॉइंट किया जाता है, वेयर एज आपका अपना एजुकेटेड यूथ है उनको जगह नहीं मिल रही, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है। तो लोग ये समझते हैं कि ये कब्जा ग्रुप है जिसने हमारी जायदादों को भी, रियल एस्टेट को भी डील करना शुरू कर दिया, जिन्होंने हमारी तमाम के तमाम, किसी भी आला इदारे की पोजीशन देख लें, आर्मी का एक अफसर बैठा हुआ नजर आएगा। तो वो एक हेट्रेड इतनी बढ़ गई है, डू यू थिंक कि आर्मी रिकवर कर जाएगी?
पहले गुजारिश करता हूं, आपने जो बात फरमाई है ना कि आर्मी रिकवर कर जाएगी, आर्मी के मुतालिक आज भी पाकिस्तानी कौम का वही प्यार है जो पहले था जो आज है। ये आर्मी की कमांड के मुतालिक आप ये कह सकती हैं बात, कमांड में भी वो सेगमेंट जो सियासत में मुलव्वज़ है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई कम फ्रॉम अ विलेज, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पहले तो मैं कह सकता हूं वसूल से कोई ऐसा घर है जिसमें से एक फौजी नहीं होगा, जेसीओ एनसीओ। अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कोई ऐसा एक मोहल्ला नहीं होगा जिसके आधे लोग कम से कम फौज में नहीं होंगे। अगर फौज के मुतालिक ये इंप्रेशन होता तो ये लोग अपने देहातों में वापस ना जा सकते जी। तो हम कहते जरूर हैं फौज एज ए टर्मिनोलॉजी, लेकिन हर एक को पता है, मैं आपको रियलिटी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, दे नो कि पाकिस्तान फौज का यह मसला नहीं है, ये फौज की कमांड का भी वो हिस्सा जो सियासत में मुलव्वस है, राइटली और रॉन्गली, एक्सक्यूज मी, वो अपनी जगह पे एक बात है। अब आप पहले तो ये बता दूं कि वो इमेज, अब ये जो इमेज की जब आप बात करती हैं, राइल शरीफ साहब के वक्त एक इमेज था पाकिस्तान आर्मी का, सॉरी कियानी साहब के वक्त, मेरा ख्याल है राइल शरीफ साहब ने ऑफिस लिया था, मैं अब कमांड के बारे में कह रहा हूं, एंड दैट इमेज चेंज ओवरनाइट। मैं आपको रिकवरी की एक पास्ट की मिसाल दे रहा हूं जी, और स्पेशली जब वो हुआ था केस अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 14 में बच्चों का इंसिडेंट, डीपीएस स्कूल
पिशावर का,
ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताने की माजी से मिसाल लेके कैच कर रहा हूं कि इंशाल्लाह जहां तक यहां पे भी है, द मोमेंट ये द डस्ट सेटल्स एंड आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स और ये इस रियलिटी को तस्लीम करें। अच्छा, अब दूसरी आपने बात फरमाई कि जो सिविलियन या दूसरी अपॉइंटमेंट है जहां पे मिलिट्री के लोग उन तनसीबात पे जाके फायज, इन प्रिंसिपल बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं, किसी भी इदारे को अपना सरबराह खुद पैदा करना चाहिए, इवन अगर सिविलियन अपॉइंटमेंट्स आप बाहर से करते हैं, आई डोंट एग्री विद दैट, नो इन प्रिंसिपल ये एक चांस है। इसके दो हिस्से इसको शुरू किया,
नौजवान की तो हक तलफी
नहीं, मैं अभी आ रहा हूं जो नौजवान का आपने फरमाया ना जी, ये बल्क है। अगर 10 लाख लोग आज पाकिस्तान से गए हैं तो कुछ 10 लाख अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलिट्री के, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, प्लीज मैं पहले वायदा कर दूं, ये है मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन। इसका अगर आप किसी को सही
ब्रेन ड्रेन में, आप कोई एक एग्जांपल तो ऐसी दे देना कि पाकिस्तान का पढ़ा हुआ बच्चा विदाउट सफारिश रिश्वत, देखिए उस इदारे की,
मैं गुजारिश करता हूं, वी हैव टू डिफाइन दिस। देखें, एक फ्रेशमैन और एक इदारे का जब हम सरबराह करते हैं, सरबराह मीन्स कि वो इस इदारे की पूरी मेच्योरिटी तक पहुंचा है, तो जहां तो आपका फ्रेशमैन है ना ज्यादा बार, तो वो जो इदारे की मेच्योरिटी पे पहुंचा है वो तो वो आदमी है जो पोस्ट रिटायरमेंट है, तो वो कितने होंगे आपके, उसको भी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, एक मिनट। ब्रेन ड्रेन की जो मेन वजूहत है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, कि मुल्क में अगर आपके मुल्क में लिटरली 2-2.5 साल से हो ही कुछ नहीं रहा, मास्वाय के जो कंपल्सिव इंडस्ट्री है, जो खाना पीना ये वो आपने कपड़ा पहना है ये वो भी कंपल्शन के तहत, कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है पाकिस्तान की, फिगर ले लेना जी, एक्सपोर्ट की फिगर आपके सामने है, ठीक। ये तो मुल्क की जो इकोनॉमिक, यहां पे मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, मैं कहीं ये जस्टिफाई। अच्छा, अब आ जाइए कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं एक्स मिलिट्री के लोगों की, ओके, जब गलत है, बिल्कुल मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा और नहीं होनी चाहिए, इन प्रिंसिपल नहीं होनी चाहिए, जब आपका सियासी निजाम कमजोर होगा। अब मैं मिसाल के तौर पर गुजारिश करता हूं, क्या आज का वजीर आजम ये बात कह सकते हैं आर्मी चीफ को कि जनाब इस इदारे में मैं नहीं इसको एक्सेप्ट करूंगा? मैं आपके सामने एक बात करता हूं, जब एक लिस्ट आती है कि इसको सफीर लगा दें, इसको ये कर दें, इसको फलाना कर दें, मैं फिर आपको पुरानी बात के ऊपर लेके जाऊंगा। अगर फौज की सियासत में ये इसका ओरिजिन वहां पे है और जब वो हावी होते हैं तो फिर
अपनी मर्जी का काम करवाते हैं,
फिर ठीक है, फिर तो फ्री फॉर ऑल है ना जी। लेकिन मैं इस बात की बुनियाद, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं,
और यही वजह है कि फौज अब इमरान खान को हल करने की नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म्स आएंगे।
आप जब तक सियासतदान इस चीज को नहीं समझेंगे, जब आपकी पॉलिटिकल ऑफिस का कैंडिडेट डिक्की में छुप के जाए आप उसके बाद मुझे बता दीजिए कि जब वो उसको ऑफिस मिल जाएगा तो उसकी क्या हैसियत होगी, तो आप मुझे बताइए उसके नीचे क्या होगा।
बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ एक लाइन में मुझे आपसे कंक्लूजन यही चाहिए। मैंने जो कंक्लूड किया आपकी बातचीत से कि इमरान खान की खातिर सारे के सारे इकट्ठे होकर बैठ के, क्योंकि अगर इमरान खान अब आएंगे तो उनका ख्याल है कि वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और वो रिफॉर्म्स ये होंगे कि आर्मी की इंटरवेंशन इन दी पॉलिटिकल मैटर्स, और पॉलिटिक्स को शुड बी अवे, हर एक को अपने अपने खाने में होना चाहिए। शायद यही वजह है कि जो कि इमरान खान और पीटीआई के लिए मसले का बायस
है। जो डिटेल्स इसकी हैं, ही वुड नो बेटर और हिज कैबिनेट वुड नो बेटर, लेकिन फिर आसोबान मैं आपको गुजारिश करता हूं जी, ये अगेन इट नॉट बी रिसीव्ड वेल, अगर आइंदा भी पॉलिटिशियंस ने परफॉर्म ना किया, मेरी बात याद रखिए,
आर्मी वहीं खड़ी है,
ठीक है जी। आइंदा भी परफॉर्म ना किया तो, ये आज भी मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरा अपने इस मैसेज के थ्रू तमाम पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं जी, इरिस्पेक्टिव विच पार्टी दे बिलोंग्स टू, मैं समझता हूं सब पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन अपनी पार्टी की सफों में वही बातें जो उन्होंने अपोजिशन में कही हैं अपने लीडर साहबान के सामने रखें, इतनी जरूरत उनमें होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, दैट सिंपल एज इट इज, तो अगर उनकी पार्टी की लीडरशिप कम्स फर्स्ट तो फिर तो आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है जी।
अगर पार्टी कम्स फर्स्ट तो फिर बात और है, मगर अगर आपने एक शख्स की हुक्मरानी ही रखनी है तो फिर तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर सुल्तान साहब, हमेशा अच्छी बात करते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि पोलराइजेशन को एक साइड पर रखते हुए तसल्ली के साथ सुनिए, बातें हौसला अफजा हैं। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। सर आपका बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया
आप लोगों का, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का। मुझे पता है कि आप लोग वीलॉग सिर्फ सुनने के कायल हैं, मैं तो एक आम आदमी के लिए प्रोग्राम करती हूँ जस्ट कि अपने दिमाग की गुत्थियों को सुलझाने के लिए। तो आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे, स्टे ट्यून्ड, चंद स्पॉन्सर्स विल कम बैक।
You are listening to WTUR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
के कनाडा जिसको हम जानते हैं इन दिनों पीछे की तरफ जा रहा है। ट्रूडो और एनडीपी लिबरल्स के 9 सालों के बाद अखराजात बढ़ गए हैं, सड़कें खतरनाक और गैर महफूज हैं, और लोग गुर्बत में जी रहे हैं, लेकिन हम चीजों को दोबारा बेहतर बनाने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन सेंस लीडर कंजर्वेटिव पे पॉलिट के पास एक मंसूबा है जिसका मतलब होगा कि सख्त मेहनत करके एक भारी आमदनी हासिल की जा सके, सस्ती खुराक और मकान खरीदा जा सके, और महफूज मोहल्लों में जिंदगी गुजार सके उस मुल्क में जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। आइए मिलकर एक बेहतर कनाडा बनाएं। ये पैगाम पे पॉलिव और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव के तावन से पेश किया गया।
बदल दी हवा होवे या त्योहारां दा मौसम होवे, ओ मुंह मिठा ताजी बनदा ही है, ता इस बार हमेशा दी तरह समोसा स्वीट फैक्ट्री ते करवा चौथ लई ताजे खोए नाल बनिया मिठाइयां ले जाओ। पूजा दा समान, मठे, मिठाइयां, ऑल अंडर वन रूफ। समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, चलो फ्रेश को लोकेशंस, ब्रेमली एंड सैंडलवुड एंड एयरपोर्ट एंड कंट्री साइड, अते सब दी फेवरेट इको लोकेशन 1850 एल्बियन रोड अटोबिको ते भी आ सकदे हो। समोसा स्वीट फैक्ट्री विशिंग यू ऑल हैप्पी करवा चौथ, 416-213-1165।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुके है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 6472903773 6472903773।
साड़ी कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु कटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। यही सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जानो। इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है।
ट्रैकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर।
कनाडा में 20,000 डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते और 32,000 नर्सें हैं जो हमारे अस्पतालों में काम करने से रोक दी गई हैं। हजारों दूसरे पेशावर लिबरल गेटकीपर्स की वजह से काम नहीं कर सकते। बस अब बहुत हुआ, कंजर्वेटिव लीडर्स पेयर पॉलिटिक ब्लू सी एग्जाम्स लेकर आएंगे ताकि नए आने वाले साबित कर सकें कि वो हमारे आला मेयारात पर पूरा उतरते हैं और मरीजों की मदद के लिए फौरी अपनी जॉब शुरू कर दें। ये कॉमन सेंस है। ये पैगाम पीए पॉलिप और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव किताबों से पेश किया गया।
السلام علیکم، میں شباہت علی فرام میگا منی ایکسچینج۔ ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوترا روڈ مسیسیپی۔
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार मॉर्गेज ब्रोकर। कॉल टुडे 6479235659 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
जी समय नाजरू, वेलकम बैक अगेन। एंड चावत का 46 मिनट और 3 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। 10 डिग्री टेम्परेचर है ट्यूजडे के दिन अक्टूबर की 15th। और साहब आज ट्यूजडे का दिन है तो ट्यूजडे को हमारे साथ होते हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब प्रदीप जी। और प्रदीप जी का ताल्लुक जनाब सनलाइफ फाइनेंशियल से है और आज हमेशा की तरह आज भी हम इनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं जनाब प्रदीप जी को। प्रदीप जी, वेलकम टू रेडियो साजो आवाज। सर अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए।
थैंक यू वेरी मच माजिद भाई मुझे फिर से मौका देने के लिए। और मैं अपने बारे में तो हमेशा ही बताता आता हूं कि 25 साल से ऊपर हो गया टाइम सनलाइफ में लाइफ इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हुए। और सनलाइफ बहुत पुरानी कंपनी 1865 से चल रही है। ये बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल कंपनी है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में ये अकेली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे 100 मोस्ट सस्टेनेबल ग्लोबल कॉरपोरेशन में शुमार किया गया है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के अलावा माजिद भाई जो इसकी बेपनाह ताकत है वो है इसकी कस्टमर सर्विस। हर क्लाइंट के पास अपना एक एडवाइजर होता है। और दूसरी चीज क्या है, क्लेम टाइम बहुत बहुत स्मूथ है इसका। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आता है और मल्टीपल सेल्स का मौका मिलता है।
बखूब 416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। आज जो हम बात कर रहे हैं तो ये तो प्रेपरेशन है। मैंने प्रदीप जी को पहले भी कहा प्रोग्राम से शुरू होने से पहले कि मैंने कहा न्यू ईयर अभी दो महीने पहले, मगर प्रदीप जी ने कहा साहब आप देखिए बाहर लाइटें लगना शुरू हो गई हैं क्रिसमस की और न्यू ईयर्स की, एंड लोगों ने अपने रेजोल्यूशन अभी से तैयार करने शुरू कर दिए हैं, तो उसमें एक हम भी आपको लिस्ट का नाम देते हैं और प्रदीप जी लेके आए हैं कि भाई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन जो लोग बनाते हैं उसमें इंश्योरेंस का कौन सा हिस्सा है। प्रदीप जी हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट?
बजीत भाई आपने कहा कि अभी तो टाइम है दो महीने का, पर दो महीने पे तो कैलेंडर में तारीख बदलेगी, 2024 की जगह 2025 हो जाएगा, लेकिन हमको 2025 में या 2025 की तैयारी के हिसाब से अपनी दिमागी तैयारी क्या करनी है उसमें लाइफ इंश्योरेंस का भी एक बहुत अहम मुकाम होना चाहिए हमारी प्लानिंग में, नहीं तो तारीख बदल जाएगी और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है हमारी एज बढ़ती जाती है, हेल्थ साथ छोड़ती जाती है, बीमारियां आसपास आती जाती हैं, उसी उस तरफ हम चलते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस बार कोशिश की कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जब बनाए, लोगों ने जिनको बनाने हैं उन्होंने तो अभी से सोचना शुरू कर दिया होगा कि क्या करना है हमें, कैसे करना है, और जो पहले गलतियां की थी हमने हम कैसे उनको अवॉइड करें और कैसे हम अपने जो हमें एक्शन लेना है उस पर कैसे चलें। तो इस पूरे उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी वक्त निकालना होगा, सोचना होगा और उसके लिए जगह देनी होगी आपको अपनी थिंकिंग में, प्लानिंग में, कि मुझे क्या कवरेज चाहिए, क्या मैं खर्च कर सकता हूं और क्यों चाहिए। इसीलिए अभी से तैयारी करनी है हमें।
तो एक जो है रेजोल्यूशन, बाज लोग सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन रखते हैं, बाज लोग तीन रखते हैं, बाज लोग सात रखते हैं, तो ऐसे
और कई लोग माजिद भाई 17 रेजोल्यूशन भी रखते हैं जो 2 जनवरी तक आते आते उसके 17 में से 3 रेजोल्यूशन रह जाते हैं और पहला हफ्ता बीतते बीतते वो एकदम फ्रेश हो जाते हैं लोग।
तो इसलिए आप इंश्योरेंस का एक हिस्सा ऐसा रखें जो पूरी लाइफ आपके साथ रहे।
बिल्कुल, तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि लोग अगर सोचें कि, और ये नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े प्लान लेंगे, हम छोटा प्लान लेंगे, उनको सिर्फ ये रेजोल्यूशन बनाना है कि आज तक मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहा, मेरे पास भी लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है जिसको कि मैं लेके रहूंगा, क्योंकि मेरे पास फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरी बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर मैं बहुत बड़ा नहीं ले सकता तो एक छोटा तो जरूर लेने की मैं कोशिश करूं, कम से कम उसके बारे में मालूमात जरूर हासिल करूं। और मैं नंबर अपना देता हूं 416-894-5872 माजिद भाई।
अगर किसी के पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है,
हाँ जी,
वो क्या कर सकता है?
वो उसको रिव्यू करवा सकता है मेरे साथ बैठ के कि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, मैंने लिया था पहले आज से 17 साल पहले 50,000 का, अब मेरी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई, पहले मेरे पास 1 लाख की मॉर्गेज थी, अब मेरे पास 7.5 लाख की मॉर्गेज हो गई, प्रॉपर्टीज मेरी बढ़ गई और बच्चे भी मेरे हैं, मेरे 2 बच्चे सेटल हो गए, अभी 3 बच्चों को और सेटल होना है वगैरह वगैरह, तो कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे उसको देखा जाए। तो मुझे कॉल करें, किसी भी कंपनी का आपके पास कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा प्लान है आप कॉल करें 416-894-5872 और बैठ के हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि आपके पास प्लान क्या है, वो कितना स्ट्रांग है या उसमें कितनी चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि माजिद भाई कोई भी प्लान हमेशा एक साथ स्ट्रांग नहीं रहता, हर सिचुएशन में वो काम नहीं आता तो, या हर बीमारी की दवा साबित नहीं होता, तो उसमें भी टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम उसमें करेक्शंस करने पड़ते हैं। कितने लोगों के पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं या स्पेशल नीड्स हो जाती हैं, वालदेन को हमने बेनिफिशियरी बनाया वो इंतकाल कर जाते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं बहुत सारी, तो ये सारी चीजों का एक रिव्यू करना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के भी बेनिफिट में। माजिद साहब
फोन नंबर अगेन
416-894 5872 मजीद भाई।
हमारे बहुत सारे शाहकार हैं हम मेरी तरह के
जी जी,
जो जिन्होंने यस इंश्योरेंस ली थी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले, मगर पेमेंट निकल रहे हैं उनके, मगर अब वो भूल चुके हैं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि वो किस कंपनी से हमने इंश्योरेंस ली है, तो व्हाट वो जिसे फॉर देम,
उन लोगों से फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे मिले, और मिलने के पहले अगर आपको नहीं पता कि किस कंपनी में आपने इंश्योरेंस प्लान लिया है, एक तो घर में ढूंढने की कोशिश करें कि पुराने कोई लेटर्स नोटिफिकेशंस या पॉलिसी समरी या पेमेंट रिमाइंडर्स आपके पास आए हैं किसी भी कंपनियों के, वो सब इकट्ठा कर लें ताकि इनमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज, आप अपने बैंक अकाउंट का पता करें कि उसमें से कोई ऐसा है अमाउंट जो कि हर महीने जाता है, एक ही अमाउंट एक ही जगह, तो आपको पता लग सकता है कि किस कौन सी कंपनी चार्ज कर रही है। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप मुझसे मिलें और फिर हम लोग बैठ के कोशिश करेंगे कि कहां से आपका इंश्योरेंस है और कैसे उसके बारे में मालूमात हासिल की जाए।
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू की बात की, अगर कोई आपसे रिव्यू करवाता है एंड देन वो शख्स सोचता है कि यार मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं, या ये कि कोई नए ऑप्शंस में ऐड कर दूं,
बिल्कुल,
हाउ वुड यू हेल्प हिम?
पहली बात तो क्या है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आदमी तो बहुत सारी चीजें करना चाहता है, कुछ चीजें पॉसिबल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत और कुछ चीजें नहीं पॉसिबल होती, लेकिन रास्ते कई चीजों के निकल सकते हैं, मिस्टेक्स करेक्ट की जा सकती हैं, और जो चीजों के रास्ते निकल सकते हैं उनको रास्ते को निकाल के उसको हमें ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश करनी चाहिए आजकल के हालात के हिसाब से इंडिविजुअल के।
नंबर बताइए अपना,
416-894-5872 मजीद भाई,
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी, हाउ वुड यू रैप इट अप?
मैं यही कहूंगा कि लोग नए साल के रेजोल्यूशन मनाते हैं और भूल जाते हैं, फिर अगले साल या हो सकता है अगले सालों में से किसी एक साल में फिर सोचते हैं उस बारे में, तो अभी से सोचें अपने रेजोल्यूशंस के बारे में, क्योंकि 2 महीने का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, और इस सोच में लाइफ इंश्योरेंस को भी जरूर जगह दीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ मैं सोचूं और कुछ उसको कॉन्क्रीट शेप देने की कोशिश करूं कि कम से कम मेरा बजट क्या हो सकता है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है और कितना मैं खर्चा कर सकता हूं। तो आप कोशिश करें सोचने की, और इस सोच में अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की तो आप मुझे कॉल करें 416-894-5872 माजिद भाई। पिछले 25 सालों से मैंने यही काम किया है और किसी तरह की कॉस्ट या ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, तो थिंक एंड देन गिव मी अ कॉल।
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। एंड हमेशा की तरह अपने एक फरमाइश का गीत लेके आते हैं, और आज भी जितेंद्रा एंड हेलन पे फिल्माया गया हुआ ये गीत कठपुतली फिल्म का नाम है, किशोर कुमार की आवाज। समाप्त फरमाइए, बहुत बहुत शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच मजीद भाई।
जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया, तेरे आंसुओं को समझ ना सकेगी, तेरे आंसुओं पे हंसेगी ये दुनिया, हंसेगी ये दुनिया।
la 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 la